हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा एक फाइल लेकर तारा के केबिन में गया था। तारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ ईमेल चेक कर रही थी। उसका एक हाथ कोहनियों पर टिका हुआ था, गालों पर रखा हुआ था और बालों की कुछ लटें उसके गालों को छू रही थीं। विक्रांत रंधावा ने तारा का ये रूप देखते ही रह गया था। तारा उस वक्त बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद विक्रांत रंधावा ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तारा ने उसे अंदर आने के लिए कहा, विक्रांत जी आप आइए, प्लीज आइए। विक्रांत उसके सामने जाकर बैठ गया। तारा ने कहा, आपको नौकरी करके आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे मेहमान हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। तारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ ये कहा। विक्रांत रंधावा मुस्कुराया और बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं कौन हूँ और कौन नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो रूल है मुझे लगता है मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए। विक्रांत ने भी एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, वैसे जैसे कि आप यहाँ की हेड मैनेजर हैं और अमन तो यहाँ नहीं है। जैसे ही तारा ने सुना कि अमन यहाँ नहीं है, वो बीच में बोल पड़ी, ये आप क्या कह रही हैं? अमन सर यहाँ नहीं है तो कहाँ है? विक्रांत ने तारा से कहा, क्यों, क्या अमन ने आपको बताकर नहीं गया कि वो कहाँ गया है, या फिर वो आपको कुछ बताना पसंद ही नहीं करता है? विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा। विक्रांत का मकसद तारा और अमन के बीच गलतफहमी पैदा करके उन दोनों को अलग करने का था। वो जानता था कि वो सीधे सीधे तारा को हासिल नहीं कर सकता था। अगर वो उन दोनों के बीच फूट पैदा कर दे, नफरत पैदा कर दे, तो आसानी से वो तारा को हासिल कर सकता था। इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया था। विक्रांत की बात सुनकर कि अमन ने उसे नहीं बताया, तारा कुछ अजीब सा महसूस करने लगी और बोली, शायद वो जल्दी में होंगे इसीलिए नहीं बता पाए। खैर आप उन्हें छोड़िए, आप बताइए आपका किस सिलसिले में आना हुआ? विक्रांत ने अपने हाथ में पड़ी फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस फाइल में मेरे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स हैं। क्योंकि आप हेड मैनेजर हैं तो इसमें आपका अप्रूवल के लिए सिग्नेचर चाहिए, तो आप एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिए। तारा ने विक्रांत के हाथों से वो फाइल ले ली, लेकिन जैसे ही विक्रांत की उंगलियों पर तारा का हाथ पड़ा, तारा को अचानक से अजीब सा लगने लगा। उसका सिर भारी होने लगा और उसे आंखें बंद होकर विजुअल्स आने लगे। उसे फिर से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे अमन उसे आवाज लगा रहा हो, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तारा ने डर के मारे अपनी आंखें खोल ली। तारा के ऐसे हालात देखकर विक्रांत ने कहा, क्या हुआ तारा जी, आप ठीक तो है ना? अचानक से आपको क्या हो गया और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? विक्रांत खड़ा हो गया और अपना रुमाल निकालकर तारा के गालों को साफ करने लगा। वो तारा को बहुत ही बारीकी से साफ कर रहा था। तारा विजुअल्स को लेकर परेशान थी तो विक्रांत का इरादा उसे पता नहीं लग पा रहा था। विक्रांत ने प्यार से तारा के गाल साफ किए और उसके कंधों को छू कर पूछा, क्या आप कुछ परेशान लग रही हैं? प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है? तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रांत को क्या जवाब दे। इसी बीच विक्रांत उसके बेहद नज़दीक खड़ा था और तारा के शरीर की खुशबू को अपने अंदर समा रहा था, क्योंकि तारा की महक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो तारा की महक से दूर रहना एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही उसे थोड़ा सा मौका मिला, वो तारा के बहुत करीब चला गया। लेकिन तारा अपने विजुअल्स को लेकर परेशान थी तो उसने और कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक तारा ने देखा कि विक्रांत काफी करीब खड़ा है। वो दो कदम पीछे हट गई और टेबल पर रखा पानी पीते हुए बोली, पता नहीं अचानक से मेरा सिर भारी होने लगा था। वैसे मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, आप जाकर अपना काम कर लीजिए। तारा ने इनडायरेक्टली विक्रांत को जाने के लिए कह दिया। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसके केबिन की खिड़की के पास खड़ा हो गया और अपनी उंगली को छूते हुए सोचने लगा, तुम ही वो उंगली हो जिसे तारा ने छुआ है। ऐसा कहकर उसने अपनी उस उंगली पर किस कर लिया। विक्रांत के अंदर तारा को लेकर हद से ज्यादा जुनून था, हद से ज्यादा तड़प थी। वो सिर्फ और सिर्फ तारा का शरीर चाहता था। उसे तारा से कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। अगर उसे किसी चीज से मोहब्बत थी, लगाव था, तो वो सिर्फ और सिर्फ तारा का शरीर था। वो उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्म में वो तारा को पा नहीं पाया था। दूसरे जन्म में तारा उसे मिली थी, लेकिन वो उसे मिलकर भी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार तारा ने बड़ी ही चालाकी से रानी माँ की मदद से राक्षस को मूर्छित कर दिया था और खुद पृथ्वीलोक पर आ गई थी, क्योंकि उसके कुल देवता ने उसे राक्षस से पीछा छुड़ाने का रास्ता बताया था। लेकिन विक्रांत रंधावा किसी भी कीमत पर तारा को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि तारा में उसकी जान बसती थी। तारा के लिए उसने अपने कितने ही जन्मों को कुर्बान कर दिया था। उसने अपने पिछले जन्म में जीवन मिलने के बाद भी उसका अंत कर लिया था, क्योंकि उस जन्म में तारा नहीं थी। तारा के इर्द गिर्द ही उसकी पूरी जिंदगी घूमती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ तारा परी का खूबसूरत शरीर चाहिए था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तारा ने जैसे ही विक्रांत को इस तरह सोचते हुए देखा, वो बोल पड़ी, क्या हुआ विक्रांत जी, आप कुछ सोच रहे हैं? विक्रांत ने तारा से कहा, वो आप ठीक है ना, अचानक से आपको क्या हो गया था? तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्रांत को क्या जवाब दे, और वैसे भी उसकी नज़रों में विक्रांत एक मामूली इंसान था, तो वो जाकर भी उसे अपनी बात नहीं समझा पाएगी। तारा ने कहा, अचानक से तबीयत शायद कुछ खराब सी लग रही है, इसी वजह से आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। विक्रांत ने फिक्रमंदी से कहा, तो फिर आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करती हैं? कल ही आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और आज फिर आप ऑफिस आ गई हैं। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तारा ने विक्रांत से कहा, विक्रांत जी प्लीज आप अमन सर को कुछ भी मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब है तो वो मुझे ऑफिस नहीं आने देंगे और मैं घर पर रहकर बोर नहीं होना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। विक्रांत कुछ देर उसे देखने लगा और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो उसी कुर्सी पर बैठ गया। तारा को ये बात अजीब लगने लगी। उसने सोचा था बात खत्म हो गई है, विक्रांत को अब चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसके केबिन में ही बैठ गया था। ये बात तारा को हजम नहीं हो रही थी और वो बोली, क्या आप नहीं जाएंगे? विक्रांत ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, हाँ तो? तारा ने कहा, एक्चुअली मुझे लगता है कि आपका काम हो गया है, तो आई थिंक आपको अपने केबिन में जाकर बैठना चाहिए। तारा ने इनडायरेक्टली उसे जाने के लिए कह दिया। विक्रांत उसे कुछ देर देखता रहा और फिर बोला, एक्चुअली तारा जी, अमन भी यहाँ नहीं है और मैं इस ऑफिस में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अकेले रहने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ आपके केबिन में आ गया हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। इस पर तारा ने खुद को डांटा, अरे यार, ये तो बेचारा अकेलेपन की वजह से यहाँ बैठा हुआ था और मैं न जाने क्या क्या सोचने लगी थी। देखो, इसे बुरा भी लग गया।
तारा जल्दी से बोली, नहीं नहीं विक्रांत जी, आप तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर आपको कोई काम बचा हुआ है तो आप अपनी केबिन जाकर उसे फिनिश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तारा ने साफ साफ क्लियर किया, वो विक्रांत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि तारा अच्छी तरह जानती थी विक्रांत की उसके पति अमन की जिंदगी में क्या जगह थी। तभी विक्रांत ने तारा से कहा, आप अपना काम करते रहिए, डोंट वरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं भी यहीं पर बैठकर तब तक अपना काम कर लेता हूँ जब तक कि अमन नहीं आता। तारा ने एक हल्की सी मुस्कान दी, इसका मतलब साफ था कि उसने हाँ कह दिया था। विक्रांत के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई और वो लैपटॉप से नज़र बचाकर बार बार अपने सामने बैठी तारा को देखने लगा। कुछ देर उसे देखने के बाद विक्रांत खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अच्छा तारा जी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आपसे एक बात पूछूं? तारा उसकी ओर देखने लगी और बोली, हाँ हाँ जी, कहिए। विक्रांत ने कहा, अमन आपके साथ ठीक तो है ना? बचपन में वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, जल्दी से उसके आसपास कोई नहीं भटकता था, तो वो आप पर कभी गुस्सा तो नहीं करता है ना? तारा ध्यान से विक्रांत की बात सुन रही थी और बोली, नहीं नहीं विक्रांत जी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तारा को अचानक से विक्रांत से अमन के बचपन की बातें सुनने का शौक चढ़ गया और वो बोली, और कुछ बताइए ना आप अमन सर के बारे में, वो बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं? एक्चुअली ये एक नॉर्मल इंसान की कमजोरी होती है, जिससे वो मोहब्बत करता है उसके बारे में छोटी छोटी चीजें जानना सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तारा बिल्कुल टोटली इंसानों की तरह बिहेव कर रही थी और अमन के बचपन के बारे में विक्रांत से पूछ बैठी थी। विक्रांत को तो तारा से बात करने का बहाना चाहिए था, सो उसे मिल गया था। वो वहाँ बैठकर तारा को अमन के बचपन के किस्से सुनाने लगा, लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो दोनों उस वक्त किसी की निगाहों के घेरे में थे।